रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद जीवन परिचय। रामानुज मद्रास के एक गांव के निवासी थे। बाल्यकाल में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अवस्था प्राप्त होने पर उन्होंने प्रसिद्ध वेदांती रामानुजाचार्य के शिष्य यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया। पढ़ने के बाद यमुनाचार्य से मतभेद हुआ, पर रामानुजाचार्य के ज्ञान से प्रभावित होकर यमुनाचार्य ने इनको भक्ति प्रचार का कार्य सौंपा। कुछ ही दिनों बाद यमुनाचार्य का स्वर्गवास हो गया, पर उनकी इच्छा थी कि वे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण की और अन्य कई ग्रंथों गीता आदि पर भी भाष्य लिखा और स्वतंत्र ग्रंथों का भी प्रणयन किया। विशिष्ट ब्रह्म, उन्होंने जिस मत को प्रसारित किया वह विशिष्टाद्वैत मत कहा जाता है। इसका कारण है कि वह अद्वैतों की तरह एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते तो थे, पर उस ब्रह्म के तीन अंगों की मान्यता को बल देते थे, ईश्वर, चित और अचित। चूंकि अद्वैत को एक विशिष्ट रूप सगुण अद्वैत के रूप में इन्होंने प्रतिस्थापित किया, इसी से इनके अद्वैतवाद को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इनका ब्रह्म एक होकर भी ईश्वर के अतिरिक्त जड़ प्रकृति और चेतन जीव को साथ जुड़ा मानने से वह अद्वैतवादियों के निर्गुण और निर्विशेष ब्रह्म से भिन्न हो जाता है। इसे विशिष्टता के कारण इनका अद्वैतवाद इस नए नाम से जाना जाता है। यद्यपि अद्वैत में ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा नहीं होता, फिर यहाँ दो और कैसे इन्होंने स्वीकार किया? इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि ईश्वर एक है, पर इसके अधीन दो चेतन और अचेतन तत्व का अस्तित्व विशिष्ट होता है। ये दोनों ईश्वर की तरह स्वतंत्र सत्ताधारी नहीं है, अतः इनका ईश्वर चित्त और अचित से युक्त होने के कारण चिदाचित विशिष्ट कहलाने से इनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इस मत में अवयवी ईश्वर के ये दोनों अवयव माने गए जाते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि सृष्टि के लिए ये दोनों ईश्वर की सहायता करते हैं। यद्यपि यह सृष्टि करता है, पर इसमें इन दोनों की आवश्यकता होती है, अतः ईश्वर इसमें विशिष्ट होता है और ये दोनों इसके विशेषण होते हैं। ब्रह्म, रामानुज ने ब्रह्म की दो स्थितियां माना है। एक ब्रह्म की सूक्ष्म, अव्यक्त, निर्विकार, अविकृत स्थिति, इसे कारणावस्था कहा है, पर दूसरे जब वह ईश्वर के रूप में शरीरधारी होकर संसार के सृष्टा के रूप में होता है, यह उसकी व्यक्तावस्था है। यहाँ यह क्रियमाण रहता है, अतः इसे उसकी कार्यावस्था कहा है। इस स्थिति में ईश्वर जीव और जड़ संसार की रचना करने से तीन अलग अलग स्थितियों में व्यक्त होता है। यहाँ ईश्वर रूप में वह जड़ जगत की रचना करता है, जिसमें कर्मानुसार ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख दुख का भोक्ता होता है। ये दो रूप सूक्ष्म और क्रियमाण को ही उपनिषद क्रमशः निर्गुण और सगुण रूप कहता है। ईश्वर ब्रह्म का सगुण रूप है, जबकि ब्रह्म स्वयं निर्गुण है। जीव भी सगुण है, पर ईश्वर में जीव के गुणों का अभाव रहता है। इससे ईश्वर और जीव में भेद हो जाता है। इन दोनों से ब्रह्म की सत्ता को अलग करने के लिए उसे निर्गुण कहा गया है। जो सगुण है वही शब्दबद्ध वर्णनीय है। श्रुति ब्रह्म का वर्णन करते हैं, अतः ब्रह्म सगुण है, पर उसे निर्गुण इसलिए कहते हैं कि वह मानवीय गुणों से रहित है, न कि वह गुणों से शून्य है। ब्रह्म ही सगुण रूप में ईश्वर है, ईश्वर ही भगवान कहलाता है, जिसे वैष्णव षट गुणों का धाम मानते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और गुणों को जोड़कर भगवान की पहचान में गुणाष्टक की बात करते हैं। साथ ही सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक रूप भी उन्हीं का है। वही पाप पुण्य, फलदाता, करुणा निधान, दुखहर्ता, दिनहितकारी, भक्त वत्सल आदि भी हैं। वही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हैं। इनके दो भेद हैं, चित और अचित, जो इनके शरीर हैं और ईश्वर इनकी आत्मा। इसी से ईश्वर अपरिवर्तनशील है, जबकि चित और अचित परिवर्तनशील है। यही मोक्ष दाता है। इस प्रकार ब्रह्म और ईश्वर की एकता रामानुज ने सिद्ध किया है। भक्तों के हितार्थ ईश्वर अपने को निम्न पांच रूपों में व्यक्त करते हैं, ऐसी रामानुज की मान्यता है। एक, नारायण वासुदेव, इसी रूप में देवता उन्हें वैकुंठ में देखते हैं। दो, व्यूह, ईश्वर सृष्टा पालक और संहारक रूप में लीला हेतु स्वरूप धारण करते हैं। 3. अवतार। ईश्वर का यह रूप विभव कहलाता है, जिसमें वह पशु या मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। 4. अंतर्यामी। प्राणियों के अंदर प्रवेश करके उनमें कर्म प्रेरक, फलदाता और नियंता रूप में रहते हैं। 5. अर्चावतार। मूर्तियों में भक्तों का पूजा ग्रहण करने हेतु विराजमान होते हैं। शंकर और रामानुज के ब्रह्म में अंतर। 1. शंकर के ब्रह्म निर्गुण है पर रामानुज के सगुण। 2. शंकर ब्रह्म में भेद नहीं मानते पर रामानुज ईश्वर में स्वगत भेद मानते हैं, क्योंकि चेतन और अचेतन भेद ईश्वर के ही हैं। 3. शंकर में ब्रह्म और आत्मा अभेद है पर रामानुज में ईश्वर और आत्मा में अंशी अंश का, सर्वज्ञ अल्पक आदि का भेद हो। 4. शंकर के ब्रह्म अमूर्त हैं पर रामानुज के मूर्त देवता हैं। 5. शंकर का ब्रह्म माया मोहित होकर भी ही सृष्टि करता है पर रामानुज का ब्रह्म सृष्टि स्वयं करता है। 6. शंकर का ब्रह्म केवल ज्ञान से जाना जाता है पर रामानुज का ब्रह्म ईश्वर रूप में अर्चा रूप से उपास्य देव है, यह अवतार लेकर कल्याण करता है। 7. शंकर का ब्रह्म व्यक्तित्व रहित है किंतु रामानुज का व्यक्तित्व युक्त है। 8. शंकर में ब्रह्म सत्य है जबकि ईश्वर माया द्वारा आवृत होता है किंतु रामानुज में ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। 9. शंकर का ब्रह्म आदर्श है पर रामानुज का ब्रह्म यथार्थ है। 10. शंकर में ब्रह्म का ज्ञान पाने वाला ब्रह्म हो जाता है पर रामानुज में वह ब्रह्म सदृश्य होता है, ब्रह्म नहीं होता। जीवात्मा। ब्रह्म के 3 अंगों ईश्वर, चित और अचित में से चित तत्व ही जीवात्मा है। चित का अर्थ है चेतन, अतः जीवात्मा ज्ञाता होने के कारण स्वयं प्रकाशित होने से अचित या जड़ से भिन्न है। ज्ञान ही इसका धर्म है। चैतन्य और आत्मा में गुड़गुड़ी का संबंध है, यह मन आदि इंद्रियों से भिन्न है। संसार के विषय में ज्ञान रखने के कारण यह ज्ञाता है, भिन्न भिन्न क्रियाओं में भाग लेने के से करता है तथा इसके फलाफल को भोगने से भोगता है, पर इसका स्वाभाविक गुण है ज्ञाता होना। ज्ञातृत्वमेव जीवात्म स्वरूपम। शरीर से जुड़ जाने के कारण इसमें कर्तापन या भोक्तापन के गुण आ जाते हैं। इसी से शरीर तथा संसार से सब जब यह छूट जाता है तो ज्ञान स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। इसका वाच्यार्थ है मैं या अहम। इसी के द्वारा वह अपने को व्यक्त करता है, जैसे मैंने अमुक कार्य किया। इसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का साधन है शरीर, इंद्रियां और मन। इससे आत्मा का अस्तित्व शरीर, मन तथा इंद्रियों से भिन्न है। यह स्वतंत्र और आनंदमय है पर पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर के द्वारा यह निमित्त होता है तथा कर्मफल इसे भोगना पड़ता है। इसी गुण को शेषत्व कहा जाता है। इसका निवास स्थान हृदय है, अतः इसका स्वरूप अणु बताया गया है। इसका शरीरों में निवास होने से यह अनेक है। अलग अलग शरीर में अलग अलग जीवात्माएं होने के कारण इसमें भेद होता है। यह आनंद रूप है पर इसका कोई आकार नहीं है, यह निरवय है। इन सभी गुणों को आचार्य बलदेव उपाध्याय ने एक वाक्य में कहा है, यह देह इंद्रिय मन प्राण और बुद्धि से विलक्षण अनंत आनंद रूप नित्य अणु अव्यक्त अचिंत्य निरवय निर्विकार तथा ज्ञानाशय है। जीव के 3 प्रकार होते हैं, 1. बद्ध सांसारिक जीव जो शरीर में निवास करता है, 2. मुक्त जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा 3. नित्य जो संसार में कभी नहीं आते, न उनका ज्ञान नष्ट होता है। वे भगवान के साथ रहने के कारण उनके परिकर कहे जाते हैं, जैसे गरुड़ आदि। ईश्वर और जीव में भिन्नता है। ईश्वर स्वतंत्र है और जीव उसका आश्रित ईश्वर पूर्ण है। जीव अपूर्ण है, ईश्वर शासक है। जीव शासित है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव परतंत्र है, ईश्वर आत्मा है। और जीव शरीर है, फिर भी जीव और ईश्वर से कुछ बिंदुओं में समता है, जैसे दोनों अज, स्वयं, प्रकाश, नित्य और कर्ता है। ईश्वर और जीव के बीच का संबंध भेद और अभेद सहित है। दोनों चेतन हैं पर दोनों की चेतना समान है। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव का ज्ञान माया से सीमित है। यद्यपि दोनों ज्ञानी हैं, जीवात्मा परमात्मा का शरीर है और परमात्मा शरीरी है। इसी से रामानुज ने ईश्वर और परमात्मा के बीच भेद अभेद और भेदाभेद तीनों संबंधों का निषेध किया है। उनका मत है कि भेद और अभेद साथ रहने वाले हैं, इसलिए पृथक होते हुए भी वे ये अपृथक है। जैसे जीव और ईश्वर पृथक होकर भी साथ ही रहते हैं, जड़ तत्व जगत। ब्रह्म का तीसरा रूप अचित या अचेतन अथवा जड़ बताया गया है। यह चेतनहीन तत्व प्रकृति है। यह विकार युक्त उत्पादन शक्ति वाला है, इसलिए यह परिणामी है, पर इसका परिणाम चेतन ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। यह स्वयं न तो प्रकाशित है, न दूसरों को प्रकाशित करता है। इसी से संसार की उत्पत्ति होती है, पर ईश्वर की इच्छा से यह त्रिगुणात्मक संसार में यह तीन प्रकार का है। एक शुद्ध तत्व, इसमें केवल सत्व गुण रहने से यह शुद्ध सत्ताधारी होता है, यह नित्य ज्ञान और आनंदमय है। दो मिश्रित तत्व, इसमें तीनों गुण साथ मिले होते हैं, इससे यह माया और अविद्या भी कहलाता है, इसी से सृष्टि होती है। तीन सत शून्य, इसे काल भी कहते हैं, यह त्रिगुणों से रहित तथा प्राकृतिक वस्तुओं के परिणाम का कारण होता है। अचित तत्व प्रकृति है, जिसका परिणाम संसार के सभी पदार्थ हैं। यह परिणाम सृष्टि तभी होती है जब माया की शक्ति से ईश्वर सृष्टि करता है। इससे रामानुज के दर्शन में अचित तत्व से उत्पन्न सृष्टि ईश्वर की लीला है। जगत कार्य कारण संबंध पर आधारित है। कार्य कारण का रूपांतरण होने से जगत की ब्रह्म का रूपांतरण है। कारणभूत द्रव्यस्यावस्थान्तरापति रेवहि कार्यता, कारणभूत द्रव्यस्यावस्थान्तरापति रेवहि कार्यता। इसी कार्यावस्था में चित और अचित दो रूप बनाते हैं, जो प्रलय काल में ब्रह्म में ही बीज रूप में समाहित हो जाते हैं। चूंकि ये बीजावस्था कारण रूप में ब्रह्म में रहते हैं और वहीं से कार्यावस्था में प्रकट होते हैं, अतः सृष्टि का स्थूल और सूक्ष्म रूप ब्रह्म से अलग नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म कार्य दोनों सत्य है, तो परिणाम सृष्टि भी सत्य ही होगी। इससे संसार सत्य है। श्वेताश्वर उपनिषद में ईश्वर को मायावी और जड़ प्रकृति को उनकी माया कहा गया है। मायाम तु प्रकृति विद्यान माइन तु महेश्वरम, अतः जगत ब्रह्म का परिणाम है। तभी यह उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्म में बीज रूप में रहता है और प्रलय के बाद फिर उसी में बीज रूप में समाहित होता है। इससे जगत की सत्यता प्रमाणित होती है। जैसे सोना सत्य है तो सोने का गहना भी सत्य होगा, पर गहने में लगी वस्तुएं भी सत्य हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार संसार की वस्तुएं भी सत्य हैं, सत्य और नित्य हैं नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्म प्रकृति बीज रूप में अविभक्त जो प्रलय काल में ईश्वर में रहती है, उसी से उनको कर्मानुसार तीन तत्वों में विभाजित कर सृष्टि रचना काल में ईश्वर संसार की रचना करता है। इन तीनों तत्वों अग्नि जल और वायु के सम्मिलन का ही परिणाम यह स्थूल भौतिक संसार है, वही इसका संचालन भी करता है। यहाँ रामानुज प्रकृति को शाश्वत मानते हैं किंतु उसे स्वतंत्र बताते हैं। रामानुज ने संसार का उपादान कारण ईश्वर को माना है, क्योंकि ईश्वर इसको अपने अंश से उत्पन्न करता है और इसी को निमित्त कारण भी बताया है, क्योंकि इसे उसने लीला निमित्त बनाया है। संसार की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए रामानुज का तर्क है कि एक श्रुति सांसारिक ग्रंथ है, श्रुति सत्य तभी है जब संसार सत्य है। दो बीज विशेष है और ब्रह्म विशेष है। जिस प्रकार विशेषण विशेष एक में नहीं मिलते, वैसे संसार का विनाश नहीं होता। तीन कारणावस्था ही प्रलयावस्था है, इसमें नाम और रूप नहीं रहता। जब जगत सत्य है तभी उसका विनाश होता है। माया, शंकर के अद्वैतवाद में माया से आवृत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म आवरण और विक्षेप से सृष्टि करता है, इससे माया की सत्ता व्यवहारिक बताई गई है, अतः इसे पूर्ण सत्य और असत से परे होने के कारण अनिर्वचनीय कहा गया है। पर रामानुज इसे स्वीकार नहीं करते, उन्होंने ईश्वर की शक्ति को माया माना है, जिसके सहारे ईश्वर सृष्टि करता है। चूंकि ईश्वर सत्य है इसलिए उसकी रचना भी सत्य है, अतः माया या अविद्या के विरोध में उन्होंने निम्न सात तर्क दिए हैं। एक, माया का आश्रय स्थान नहीं है। माया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति अद्वैतवादी मानते हैं, पर जीव को इसका आश्रय मानने पर कार्य पहले और कारण को बाद में कैसे रख सकते हैं? यदि ब्रह्म को इसका आश्रय माने तो ब्रह्म चेतन और माया अचेतन है, फिर चेतन अचेतन का आश्रय कैसे हो सकता है? जिसका आश्रय ही कोई नहीं है उसका आधार कैसे माना जाए? दो, माया ब्रह्म का आवरण नहीं है। शंकर ने माया मोहित या माया से आवतरित ब्रह्म द्वारा सृष्टि की बात की है, पर ब्रह्म ज्ञान पुंज स्वयं प्रकाश है, फिर उसको माया जो अज्ञान है वह कैसे आच्छादित कर सकती है? ज्ञान पर अज्ञान का आवरण कैसे पड़ सकता है? तीन, माया का स्वरूप संगत नहीं है। अद्वैतवादी मानते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है, इसलिए माया सत्य नहीं हो सकती। यह सत्य भी नहीं हो सकती क्योंकि अद्वैतवाद यह असत भी नहीं हो सकती क्योंकि अद्वैतवाद असत को वंध्या पुत्र या सशत श्रृंग के नाम मान के समान मानता है। क्षम्यताम, क्योंकि अद्वैतवाद असत को वंध्या पुत्र या सशत श्रृंग के समान मानता है। यह इस प्रकार का माना नहीं जा सकता क्योंकि यह ब्रह्म को आवृत करती है। यदि भावात्मक माना जाए तो इसका अंत नहीं होगा। यदि निषेधात्मक माना जाए तो ब्रह्म से जगत को कैसे जोड़ सकते हैं? चार, अनिर्वचनीय कोई कोटि नहीं है। शंकर ने माया को सत कहा न असत, इसे अनिर्वचनीय कहा, यह कोई कोटि नहीं होती। पांच, प्रमाण रहित है। अविद्या को प्रत्यक्ष शब्द भाव अनुमान से जानना असंभव है क्योंकि इसमें ज्ञान का अभाव होता है। छह, ज्ञान से उसका अंत नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए भेद आवश्यक है, पर अद्वैत ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष अभेद है। भेद का ज्ञान मिथ्या होने से उसके द्वारा अविद्या का अंत कैसे किया जा सकता है? सात, ईश्वर की भक्ति से अविद्या का अंत हो सकता है। शंकर अविद्या को भाव रूप मानते हैं, अतः उनके अनुसार इसका नाश नहीं होता, पर रामानुज मानते हैं कि आत्मा के ज्ञान तथा ईश्वर की भक्ति से अविद्या का नाश होता है। बंधन और मोक्ष, आत्मा का शरीर से संयोग होने से कर्म प्रारंभ होता है। एक छोटा दीपक कैसे जैसे कमरे को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन अणु रूप आत्मा शरीर के संसर्ग में आते ही इंद्रियों को चेतन करके कर्म के लिए प्रेरित करती है। कर्म का कारण अविद्या है क्योंकि जीव आत्मा के शुद्ध चेतन रूप को भूलकर शरीर को ही चेतन मानने लगता है। इससे ममत्व तथा अहम बुद्धि का भाव जीव में आ जाता है, वह अपने को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है। इसका जो फलाफल होता है उसे भोगने के लिए उसे जन्म मरण के चक्र में बंधना पड़ता है। अब वह पुनर्जन्म और मृत्यु इनके अनवरत चक्र में घूमता रहता है। यहाँ वह दुख पीड़ा सुख आदि को भोगता रहता है। यही जीव का बंधन है, वह इसी को अच्छा मानता है। इससे छुटकारा पाना ही मोक्ष है। मोक्ष को रामानुज ने परिभाषित किया है कि जीव से कर्तापन और भोक्तापन के भाव के समाप्त होते ही जन्म मरण के बंधन का टूटना ही मोक्ष है। अथ कर्मणा संबद्धस्य परम ज्योति रूपम संपद्यम बंधन निधत्ति रूपा मुक्ति। इस प्रकार अभाव ही मोक्ष है। इस स्थिति में शारीरिक संबंध का अभाव, अहमत्व और एवं ममत्व का अभाव, कर्तापन और भोक्तापन का अभाव, अज्ञानता का अभाव बना रहता है। अब उसका शरीर आनंदमय हो जाता है। अब आत्मा और ब्रह्म की पृथकता समाप्त होकर उनमें सादृश्यता हो जाती है। अब ब्रह्म की साम्यता आत्मा प्राप्त कर लेती है। रामानुज के अनुसार यह ब्रह्म में लीन नहीं होती, जैसा शंकर का मत है। इसका कारण रामानुज ने दिया है कि सीमित असीमित में एकाकार भला कैसे हो सकता है? आत्मा सीमित है, ब्रह्म असीमित, तो दोनों एक में कैसे मिल सकते हैं? इसी से समकक्षता की बात दोनों के बीच रामानुज ने किया है। इसके द्वारा मुक्त आत्मा ब्रह्म की तरह परमानंद और अनंत चेतन बन जाती है। मुक्ति कब होती है? इस प्रश्न पर उत्तर रामानुज ने दिया है कि शरीर के रहते मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति मरणोपरांत प्राप्त होती है। इसी से शंकर की तरह रामानुज ने जीवन मुक्ति की बात को माना ही नहीं, केवल विदेह मुक्ति को ही मानते हैं। मुक्ति प्राप्त के दो साधन रामानुज ने बतलाया है, कर्म और ज्ञान। कर्म द्वारा मुक्ति प्राप्ति के लिए उनका दृष्टिकोण है कि शास्त्र सम्मत रीति से वर्णाश्रम धर्म के पालन द्वारा मोक्ष मिल सकता है। जो ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का प्रयास करते हैं उन्हें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं। निष्काम कर्म द्वारा इस जन्म के कर्म के फलाफल से जीव बच जाता है एवं तथा पूर्व जन्मों का कर्मफल निष्फल हो जाता है। इसके लिए ईश्वर में बुद्धि लगानी होती है। यह मीमांसा और वेदांत के अध्ययन से संभव है। इसके द्वारा ईश्वर में भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। यदि विद्वत्ता की ही मुक्ति की कसौटी होती तो प्रत्येक विद्वान मोक्ष प्राप्त कर लेता, पर ऐसा नहीं है। भक्ति के भाव को जागृत करने में ज्ञान साधक होता है। इन दोनों ज्ञान और कर्म से ईश्वर की भक्ति में जीव प्रवृत्त होता है, वह ईश्वर से प्रेम रखने लगता है। जब हम किसी से प्रेम करेंगे तो उसके प्रति समर्पित होंगे। यही समर्पण शरणागति है। तब भक्तवत्सल भगवान शरणागत को अपने चरणों में स्थान दे देंगे। इसका परिणाम होगा कि शरणागत के दुखों का अंत हो जाएगा, वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा और वह ईश्वर का सानिध्य ग्रहण कर लेगा। यही अवस्था भक्ति की है। यहाँ शंकर ने प्राप्तस्य प्राप्ति की बात की है, पर रामानुज बिना भागवत कृपा के मोक्ष प्राप्ति की को संभव नहीं मानते। ऊपर शरणागति की चर्चा की गई है, इसके लिए 6 मार्ग बताए गए हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षितस्य तीति, विश्वासो गोप्तृतत्वे वर्णम तथा आत्मविक्षेप कार्यन्ये षड्विधा शरणागतिः। 1, भगवान के अनुकूल कर्म विचार और संकल्प करना। 2, भगवान के विपरीत ऐसा न करना। 3, भगवान रक्षा करेंगे यह भरोसा करना। 4, भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करना। 5, भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना। 6, भगवान से दीनता प्रदर्शित करते अनुनय करना। इस प्रकार करता हुआ जीव ब्रह्म भाव को समाप्त हो जाता है। यही प्राप्त करना मुक्ति है। ब्रह्मणो भाव न तु स्वरूपे त्वयम्। मुक्ति के 4 प्रकार रामानुज ने बताए हैं। 1, सानिध्य, इसमें आत्मा का परमात्मा के सानिध्य में रहना। 2, सालोक्य, जीवात्मा का परमात्मा के विष्णु लोक में निवास करना। 3, सायुज्य, जीवात्मा का परमात्मा का सायुज्य संबंध होना। 4, शारुण्य, जीवात्मा का परमात्मा के प्रकार का हो जाना। ये 4 प्रकार भावात्मक होने से रामानुज शरीर की समाप्ति पर ही मुक्ति मानते हैं, जिसमें केवल जन्म मरण से मुक्ति ही नहीं मिलती अपितु परमानंद की प्राप्ति और ईश्वर साक्षात्कार भी होता है।